जा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं। थाम ले पिया करते हैं वादा, अब से तू आरज़ू तू ही है इरादा। मेरा नाम ले पिया मैं तेरी रुबाई, तेरे ही तो पीछे पीछे बरसात आई, बरसात आई। तू इत्र इत्र सा मेरे सांसों में बिखर जा, मैं फकीर तेरे कुर्बत का तुझसे तू मांगू दे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं।
एक फकीर और उसका एक शिष्य हज की यात्रा के लिए निकले, पैदल बहुत लंबा सफर तय किया और बीच में एक मरुस्थल एक रेगिस्तान आ पड़ा। दोनों को बहुत प्यास लगी परंतु पानी का कोई ठिकाना न था। गुरु और शिष्य दोनों ढूंढ रहे थे कि अचानक एक झील नजर आई और वो दोनों उस झील पर पहुंचे और सौभाग्य से उसी झील के पास एक पात्र भी पड़ा था, क्योंकि उनके पास पात्र भी नहीं था। उस शिष्य ने पात्र लिया और उस झील से पानी निकाला और जैसे ही पीने को गया तो पानी इतना कड़वा था, जहरीला था, जैसे प्राण लेते। उसने अपने गुरु से कहा कि ये पानी तो पीने लायक ही नहीं है, जहर है इसमें, तो विषाक्त है, प्यास बहुत ज्यादा थी। वो दोनों आगे बढ़े, एक दूसरी झील उनको नजर आई, परंतु पात्र वो अपने साथ ले आए थे। फिर से शिष्य ने जाकर उस पात्र में पानी भरा और जैसे ही कंठ में पानी उतारा फिर से देखा इतना तिक्त। विषाक्त। आश्चर्य हुआ कि वो झील भी जहरीली थी और ये झील भी जहरीली। फिर आगे बढ़े, बहुत प्यास, कंठ सूखा जा रहा था। फिर एक झील मिली और दोनों फिर खुश हुए। फिर से शिष्य ने पात्र को झील में डाला पर पानी तो वैसा ही कड़वा विषाक्त था और वो आपस में बात करने लगे, ये कैसा रेगिस्तान है जहां की हर झील में पानी जहरीला है। वहीं बैठा एक दूसरा फकीर हंसने लगा और कहने लगा, ये पानी तो बहुत मीठा है, मैं तो कितने समय से इसी झील पर पानी पीता हूं। शिष्य ने कहा कि नहीं, ये तो बहुत कड़वा है। उस फकीर ने कहा, अपना पात्र फेंक दो और सीधा पानी पियो, शायद पात्र ही खराब है, शायद पात्र ही विषाक्त है। शिष्य ने पात्र फेंक दिया और हाथों से पानी पिया, पानी बहुत मीठा था। जब तक सीधा संपर्क न था तब तक दुविधा थी, जब पता चल गया कि पात्र ही जहरीला है और पात्र को ही फेंक दिया तो फिर सारी मुश्किलें सहज हो गई। ये पात्र आकांक्षा का पात्र है, ये पात्र इच्छाओं का पात्र है। इसी इच्छाओं के पात्र को लेकर मनुष्य फिरते रहता है, घूमते रहता है और उसमें जो कुछ भी डाला जाता है वो विषाक्त हो जाता है। जो मनुष्य धर्म के मार्ग पर नहीं है, अध्यात्म में नहीं है, वो भी इसी पात्र को लिए हुए है और घूमता फिर रहा है संसार की वस्तुओं के लिए, धन दौलत पैसा। परंतु जो धार्मिक है, जो अध्यात्म के मार्ग में है, वो भी ऐसा ही कोई पात्र लेकर घूम रहा है और उसकी कठिनाई तो पहले वाले व्यक्ति से भी ज्यादा है, क्योंकि इसमें परमात्मा चाहिए, इसमें स्वर्ग चाहिए, इसमें अलौकिक इच्छाएं हैं। पात्र तो वही है और जहां जहां इच्छा है, जहां जहां तृष्णा है, आकांक्षा है, वहां वहां बेचैनी है। गाड़ी, महल, कार, ये चाहिए वो चाहिए, जो आज है और कल नहीं। बाबा ने कहा, तुमको क्या मिला है, कार या कारून का खजाना? तुम मांग नहीं सकते, तुम्हें सब कुछ मिल चुका है। जहां दिल की खुशी मिल गई वहां फिर और कुछ पाना बाकी नहीं रहता, अप्राप्त कुछ वस्तु नहीं रहती। परंतु जहां संसार है परंतु भगवान नहीं तो फिर रिक्तता है। तू इत्र इत्र सा मेरे, सांसों में बिखर जा, मैं फकीर तेरी कुर्बत का, तुझसे तू मांगू रे। क्या कहा शायर ने, मैं क्या मांगता हूं, तेरी वस्तुएं नहीं चाहिए मुझे, तेरा संसार नहीं चाहिए मुझे, मैं क्या मांगता हूं, बहुत बड़ी इच्छा है, तुझे तू दे दे, मैं फकीर तेरी कुर्बत का, कुर्बत अर्थात समीपता, तेरी समीपता मांगता हूं, मैं फकीर तेरी कुर्बत का, तुझसे तू मांगू रे। तू इत्र इत्र सा मेरे, रूह में बिखर जा, अंतरात्मा में समा जा, फिर कुछ भी नहीं चाहिए संसार का। जहां दिल की खुशी मिल गई वहां कुछ भी नहीं चाहिए, तब सब चीजों की व्यर्थता का पता चलता है और सभी चीजें, सभी वस्तुएं विनाशी है, आज है कल नहीं। बाबा ने कहा, तुमको कौन मिला है, तुमको भाग्य विधाता मिला है, भाग्य मिला है जो भाग्य अविनाशी है, जिससे तुम अमर हो गए हो, ये भाग्य ये खजाना तुम्हारे साथ चलेगा। वो खजाना तो आज है कल नहीं है। लिस्ट बनाओ, एक फहरिस्त, देखो मुझे क्या क्या मिला है, देखो और खो जाओ इस चिंतन में। हमारा ज्यादा से ज्यादा चिंतन उस पर चलता है जो हमारे पास नहीं है और जो दूसरे के पास है, उसको छोड़कर सारा फोकस अवधान इस बात पर लगा दे कि मुझे क्या क्या मिला है। तुम्हें भाग्य विधाता स्वयं मिल गया है, ये नशा हो ये खुशी हो, तुम्हारा गीत क्या है, वारे मैं वारे भाग्य विधाता बाप, ये गीत गाते रहो, नाचते रहो, गाते रहो, हल्के रहो। और तुम्हारी मौज कैसी है, गुजरात से मुलाकात, कैसी मौज है ये, कैसी मौज है, कैसी मौज है, कैसी तुम्हारी मौज कैसी है ये, अविनाशी। ये मन की मौज है, ये मौजों का जीवन है। डबल लाइट हो, हल्के हो, नाचते हो, गाते हो, तुम्हें सब कुछ मिल गया है। तन में क्या मिल गया, तंदुरुस्ती। मन में क्या मिल गया, शांति। और धन से क्या हो गया, धन से क्या हो गया, धन से क्या हो गया, धन से तो सबसे महत्वपूर्ण चीज हो गई, प्रसाद बन गया, क्या दाल रोटी, जो याद में बनाते हो और याद में खाते हो उसे प्रसाद कहा जाता है। संसार में 56 प्रकार के, 36 प्रकार के भोग होंगे, पर तुम्हारे पास जो है वो प्रसाद है, महाप्रसाद है। इस अवेयरनेस के साथ भोजन किया जाए कि मैं क्या खा रहा हूं। प्राप्तियों का चिंतन, क्या क्या मिला है उसका चिंतन, और सबसे बड़ी सौगात इस ब्राह्मण जीवन में मिली है वो कौन सी है, सबसे बड़ी सौगात, सबसे बड़ी विशेषता, सबसे बड़ी नवीनता, सबसे बड़ा श्रृंगार, सबसे बड़ी विशेषता क्या है, प्यूरिटी, पवित्रता, सबसे बड़ी धारणा, सबसे बड़ा वरदान, सबसे बड़ा आशीर्वाद। प्यूरिटी ही क्या है, रॉयल्टी। प्यूरिटी ही क्या है, लॉयल्टी। प्यूरिटी क्या है, रियल्टी। प्यूरिटी ही क्या है, पब्लिसिटी। प्यूरिटी ही क्या है, पर्सनालिटी। प्यूरिटी ही क्या है, ऑनेस्टी। प्यूरिटी ही क्या है, ब्यूटी। ट्रू ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी। प्यूरिटी ही क्या है, श्रृंगार। प्यूरिटी ही क्या है, टी अथॉरिटी। प्यूरिटी ही क्या है, प्रॉस्पेरिटी। प्यूरिटी क्या है, मदर है। प्यूरिटी की गोद में कौन खेलते हैं, दो बच्चे, सुख और शांति। जहां प्यूरिटी है वहां सुख शांति है। प्यूरिटी महीनता है, जैसे कर्मों की गति गुह्य है वैसे प्यूरिटी की परिभाषा भी बहुत गुह्य है, वो कभी और सुनाएंगे, ऐसा कहा ना आज। तो आज की मुरली बड़ी गुह्य है, राजों से भरी है, शब्द शब्द अव्यक्त है। तो आज हम इसी मुरली की चर्चा करेंगे। पहले आप सुनाएंगे क्या कहा पवित्रता के बारे में, संकल्प, मन, वचन, कर्म, और स्वप्न में भी, और ईर्ष्या नहीं, आवेश नहीं, अंश नहीं, पूजनीय बनने। प्यूरिटी आधार है प्यूरिटी का, पूज्य स्वरूप का। प्यूरिटी आधार है प्रकृति का, प्यूरिटी खुराक है प्रकृति के लिए, संसार की आत्माओं के लिए जीवदान है प्यूरिटी। खंडित मूर्ति, अखंडित मूर्ति, और क्या कहा, और क्या कहा, पूजा में फर्क, क्या फर्क होगा, किसी की पूजा साल में एक बार होती है और किसी किसी की रोज, और एक ही दिन में कई बार पूजा होती है। पर क्या वास्तव में हमें कोई चिंता है उस पुजारी की? क्या इसलिए हम प्योर बन रहे? शायद कोई नहीं होगा जिसको उसकी चिंता है। आने दो, सुस्ती से, चुस्ती से, मजबूरी से, कभी देरी से, कभी जल्दी। और क्या कहा, और क्या कहा? खंडित, खंडित मूर्ति कहाँ जाती है? म्यूजियम, अजायब घर। और वहां जाके क्या होता है? उसका पूजा नहीं होती है, सब लोग देखते हैं उसको। और क्या कहते हैं? ये बहुत पुरानी मूर्ति है, वस्तु है, बस। और क्या कहा आज की मुरली में? और क्या क्या था, याद करो। तुम जहान के नूर हो, तुम अविनाशी हो, रोशनी हो। जैसे शरीर में नूर का महत्व है, वैसे तुम जहान के नूर हो। आप चढ़ते हो तो वो चढ़ते हैं, और आप उतरते हो तो वो उतरते हैं, और आप गिरते हो तो वो भी धड़ाम से गिरते हैं। आप परिवर्तित होते हो तो वो परिवर्तित होते हैं। और अमृत वेला क्या? शुद्ध पवन। और क्या कहा, याद करो। स्वप्न में भी क्या, जब स्वप्न का भी इतना प्रभाव है तो साकार का कितना प्रभाव होगा। और कर्म द्वारा गुणों का दान। और ठका ठक क्या हो जाएगा एक सेकंड में? और हो गया, कार मिल गई, कारुण का खजाना भी मिल गया। और 108 की माला। और सेवा में सफलता का सितारा। और तो पूरी मुरली महत्वपूर्ण टॉपिक पर है, प्यूरिटी। इस प्यूरिटी की हम आज 12 बातें देखेंगे। सबसे पहले प्यूरिटी विधि पूर्वक हो। सबसे पहली बात, प्यूरिटी कैसी हो? विधि पूर्वक हो। इसका क्या अर्थ है? विधिवत प्यूरिटी हो। जैसे पूजा होती है ना विधिवत, या कभी भी कैसी भी पूजा की जाती है ना, विधिवत पूजा की जाती है, वैसी ही हमारी पवित्रता, हमारी पाकीज़गी, हमारी प्यूरिटी विधिवत प्यूरिटी हो। अर्थात वैसी ही हो जैसी उसने सिखाई है। अब तक जन्म जन्म से संसार की आत्माएं प्यूरिटी सिखा रही थी, अब तक जन्म जन्म से संसार की आत्माएं ब्रह्मचर्य का ज्ञान दे रही थी, परंतु वो मार्ग बड़ा कठिन है। भगवान ने कठिन मार्ग नहीं सिखाया, भगवान ने सहज मार्ग सिखाया। जैसे एक व्यक्ति था, उसे सर्दी जुकाम था, और उसका सर्दी जुकाम कोई भी ठीक नहीं कर सकता था। कितने चिकित्सकों को दिखाया, कितने डॉक्टर्स ने सबको दिखाया, कोई उसका सर्दी जुकाम ठीक नहीं कर पाया। आखिर जंगल पहुंचा एक नीम हकीम के पास, अपनी पीड़ा सुनाई, दुखड़ा सुनाया। उस नीम हकीम ने कहा, बस इतनी छोटी सी बात, ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल, मैं तो चुटकी बजा दे तुम्हारी बीमारी ठीक कर दूंगा। वो कहता है, बताओ क्या इलाज है? वो कहता है, आधी रात जब बहुत सर्द सर्द रात हो, ठंडी का मौसम हो, ऐसे ठंडी के मौसम पर जाना, में जाना, और जो झील हो एकदम सर्द वाली, वहां नंग धड़ंग होकर स्नान करना ऐसी झील में, बस तुम्हारी सर्दी जो है ना, ये सर्दी खांसी एकदम ठीक हो जाएगी इमीडिएटली, ताबड़तोब हमेशा के लिए। वो कहते हैं, आप पागल तो नहीं हो गए? क्या इससे सर्दी खांसी मेरी ठीक हो जाएगी? वो कहता है, मैंने ये तो नहीं कहा ना तुम्हारी ये बीमारी ठीक हो जाएगी, मैंने ये कहा कि इससे तुमको निमोनिया हो जाएगा, और निमोनिया का इलाज मुझे पता है। फिर मैं तुमको ठीक करूंगा। तो अब तक पंडित, पुरोहित, किताबें, शास्त्र सबने हमको यही मार्ग बताया है। कौन सा वाला? पहले वो करो, फिर वो करो, फिर वो करो, फिर ऐसा करो, फिर वैसा करो। तो भगवान ने आके सबसे पहली बात, प्योरिटी कैसी होनी चाहिए तुम्हारी? विधिवत, विधि पूर्वक प्योरिटी होनी चाहिए, जैसी उसने सिखाई, जिन शब्दों में उसने सिखाई। और वो प्योरिटी ही सिखा रहा है इतने सालों से अलग अलग शब्दों में। और इसी मुरली में कहा, प्योरिटी अर्थात केवल निर्मोही बन जाना प्योरिटी नहीं है, केवल ब्रह्मचर्य धारण कर लेना प्योरिटी नहीं है। हाँ, परंतु ब्रह्मचर्य प्योरिटी का बहुत महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है, पिलर है। बिना ब्रह्मचर्य के प्योरिटी की इमारत खड़ी नहीं हो सकती, वो तो नींव है। ब्रह्मचर्य को हटा दो, प्योरिटी नीचे गिर जाएगी। ब्रह्मचर्य प्रथम सोपान है पवित्रता का। पर केवल कोई ब्रह्मचर्य धारण कर ले, ब्रह्मचारी तो संसार में बहुत है, तो क्या वो संपूर्ण पवित्रता को प्राप्त हुए है? ना, वो संसार में ब्रह्मचर्य केवल एक विकार के लिए सीमित रह गया है शब्द, जबकि वो असीम है, बेहद का है। तो हमारी पवित्रता कैसी हो? विधि पूर्वक। इसके लिए संशोधन करना होगा, ढूंढना होगा मुरलियों को, सारी मुरलियां निकालो जिसमें प्योरिटी की चर्चा है। भगवान एक ही काम के लिए आया है, पवित्र बनाने। ये फर्स्ट सब्जेक्ट है, फर्स्ट टॉपिक है, ये उसका मुख्य उद्देश्य है इस संसार में आने का। वो और किसी काम के लिए नहीं आया है, बस इस एक के लिए आया है। और इसी एक में जो कमजोर रह गया, ऐसे को क्या कहा जाएगा? इस एक को ही जो समझ नहीं पाया, इसकी गहराई, इसकी चौड़ाई, इसकी लंबाई समझना है, क्या है, एक्सप्लोर करना है, रिसर्च करना है, अपनी एक अलग से डायरी बना के रखना है, जिसमें रोज जो प्यूरिटी के वाक्य आते हैं, वो सारे प्यूरिटी के वाक्य उस डायरी में नोट करके रखना है। उसमें और कोई दूसरा टॉपिक नहीं होगा, केवल प्यूरिटी। दूसरी एक किताब है यज्ञ में, संपूर्ण पवित्रता, बाबा के अव्यक्त महावाक्यों का संकलन है। एक दूसरी किताब है बाप समान बनने वाली शिक्षा है, उसमें एक पूरा चैप्टर प्यूरिटी पर है। जगदीश भाई जी की एक किताब है ब्रह्मचर्य का व्रत। प्यूरिटी धारण करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, क्या क्या किया जाए, कैसे प्यूरिटी धारण हो? क्या केवल नारे लगाने से होगा? क्या केवल समान लिखने से हो जाएगा? मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मैं सृष्टि की सबसे पवित्र आत्मा हूं। हाँ, जो कुछ नहीं कर रहे उनसे तो ये ठीक है, परंतु जब तक प्यूरिटी का चिंतन नहीं, प्यूरिटी धारण भी नहीं होती है। तो प्यूरिटी धारण करने के लिए कुछ धारणाओं की आवश्यकता है, और सबसे बड़ी धारणा है अमृत वेला, जिसका अब तक अमृत वेला ही धड़खड़ा रहा है, अमृत वेला ही स्थिर नहीं है, कभी है कभी नहीं है। तो प्यूरिटी भी वैसी ही होगी। दूसरा, ज्ञान का चिंतन। जितना गहन ज्ञान का चिंतन होगा, उतनी प्यूरिटी अंदर में स्थापित होगी। तीसरा, स्वयं को बिजी रखना, हर समय कुछ ना कुछ करते रहना, कोई ना कोई सेवा, कोई ना कोई चिंतन, ज्ञान योग धारणा सेवा में कहीं ना कहीं। जब भी मन खाली होता है, तब तब वो अपवित्रता की ओर भागता है, बिजी रख देना। चौथा, योग निद्रा। रात को सोते समय योग निद्रा का अभ्यास करते करते, प्यूरिटी के संकल्प करते करते सो जाना, तो प्यूरिटी दृढ़ होगी। अगला अध्ययन, प्योरिटी से संबंधित जितनी किताबें हैं उनका निरंतर अध्ययन करते रहना। अगला आत्माभिमानी स्थिति, निरंतर आत्मिक स्वरूप का अभ्यास, इस आत्मा को ही एक्सप्लोर करते रहना, क्या है ये, उसका मूल स्वभाव क्या है। अगला परमात्म याद, जितना योग होगा, जितनी याद होगी उतनी ही पवित्रता होगी, वो पवित्रता का सागर है, इस संसार में उससे अधिक पवित्र कुछ भी नहीं है। जब अपने आप मन उसमें लग जाता है तो उसकी सारी पवित्रता हम खींचने लगते हैं। उसके बाद प्रभु प्रेम, जो आत्मा प्रभु प्रेम में डूबी रहती है पवित्रता उसके लिए सहज हो जाती है। जो संसार में चिपकी हुई है, संसार की आसक्तियों में लगी हुई है, मोह में मोहग्रस्त है, उसके लिए पवित्रता मुश्किल है। अगला डिजिटल डिटॉक्स, सबसे ज्यादा इंप्यूरिटी कहां से आती है, स्क्रीन से, पोस्टर्स, पिक्चर्स, सॉन्ग्स, लिटरेचर, संसार का वायुमंडल दूषित है इस समय, जहां देखो वहां अश्लीलता है, विकार है, और ये सारे विकार इंटरनेट, यूट्यूब, जितने सोशल मीडिया के साधन है, आंखों के द्वारा अंदर प्रवेश करते हैं। कैसे आत्मा पवित्रता का चिंतन करेगी या स्वरूप में स्थित होगी जब आंखें वहां भाग रही है जहां उसे नहीं भागनी चाहिए। आंखें वो देख रही है जो कि अंदर विकार उत्पन्न करता है। जैन धर्म है, कितने कड़े नियम है उसके। हमारी ओपीडी में जैन साध्वी आती है, उनमें एक नियम है, यदि कोई पुरुष 48 मिनट्स तक किसी चेयर पर बैठा है तो वहां वो नहीं बैठेगी के अंदर, अगर बैठा है तो वाइब्रेशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस, पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स है, दे अट्रैक्ट ईच अदर, आकर्षण निर्माण होता है। इसके लिए ब्रह्मचर्य के लिए, चारी के लिए, साध्वी और साधक के लिए वर्जित है। हंसी मजाक, आपस में मिलना, अधिक बातें करना, मैत्री बनाना पतन होता है। स्त्री के लिए पुरुष का देह और पुरुष के लिए स्त्री का देह आध्यात्मिक उन्नति में सबसे बड़ी बाधा है। बड़े बड़े योगी और बड़े बड़े तपस्वी क्यों गिर गए, इसी एक विकार के कारण। क्रोध को नहीं कहा जाता काला मुंह, क्रोध के लिए नहीं कहा जाता है पतित, क्रोध के लिए नहीं कहा जाता है पांचवी मंजिल से नीचे गिरा, हड़गुड़ टूट गया, काम के लिए कहा जाता है। वस्त्र, किस तरह के वस्त्र पहने जा रहे हैं, किस तरह का भोजन खाया जा रहा है, राजसिक है, सात्विक है या तामसिक है। जिस भोजन खाने से अति उत्तेजनाएं उत्पन्न होती है वो ब्रह्मचर्य को खंडित करेगा। जिस भोजन से कब्ज होता है वो जीवनी शक्ति का नाश करेगा। जो भोजन निद्रा को लाता है, प्रमाद लाता है, आलस्य लाता है, वो ब्रह्मचारी की शक्ति को नष्ट करेगा, भारीपन लाएगा, जड़ता लाएगा। जो अधिक भोजन करता है वो ब्रह्मचारी का व्रत करना मुश्किल है उसके लिए। ब्रह्मचारी अर्थात अल्पाहारी, ब्रह्मचारी अर्थात उसके भोजन में सतो तत्व अधिक है, प्राण ऊर्जा है, और 2400 घंटे एक चौथाई हिस्सा पेट का खाली ही रहता है। नॉन इरिटेटिंग फूड, हाई वाइब्रेशनल फूड, लाइट फूड, भगवान के महावाक्य है, योगी अर्थात जिसका भोजन सूक्ष्म से सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतम होते जाएगा, क्योंकि खुशी ही खुराक है उसके लिए। तो खुशी ही इतनी है कि कौन मिला है याद ही नहीं है कुछ, फिजिकल फूड कम कम हो रहा है, परंतु दमन से नहीं स्वतः सहज, इसीलिए ऐसी प्राण ऊर्जा बह रही है, इसीलिए ओज है, तेज है, प्राण है, ये तीन शक्तियां है, ओज, तेज और प्राण बह रही है, ऊर्ध्वगामी है, अधोगामी नहीं है, ऊर्ध्वरेता योगी है, वो तपस्वी है। और ऐसे ही योगी संसार के लिए आधार है, जिनका सुख भोग की वस्तुओं में नहीं है, जिनका सुख संकल्पों में है, शरीर में नहीं, जिनका सुख अतीन्द्रिय सुख में है, जिनको इस संसार की चीजें आकर्षित नहीं करती, ना शरीर आकर्षित करता है, ना शरीर से संबंधित सारी चीजें, वो ब्रह्मचर्य, वो पवित्रता। और जिनकी पवित्रता नित्य नूतन है, हर समय बढ़ रही है, हर समय अनुभव हो रहा है कि कल जो पवित्रता थी आज उससे ज्यादा है, कल जो शक्ति थी चेतना में आज चेतना शक्ति बढ़ गई है, ऐसी अनुभूति अर्थात पवित्रता। देह देह में, नस नस में, रग रग में, रोए रोए में प्यूरिटी का अनुभव, धमनियों में रक्त के साथ पवित्रता बह रही है, ऐसा अनुभव, हल्कापन, लाइटनेस, शरीर भी लाइट, मन भी लाइट। तो 12 बातों में सबसे पहली बात, पवित्रता कैसी हो तुम्हारी, विधि पूर्वक। दूसरा, नियमित, क्योंकि तुम्हारी पवित्रता यदि नियमित नहीं तो उधर भक्त भी गड़बड़ करेंगे, बीच बीच में छुट्टी ले लेंगे, और जिस दिन त्योहार है मंदिर में बड़ा, उस दिन तो सुबह 3 बजे आके पहुंच जाएंगे, पूजा करेंगे विधिवत, भावावेश, आंसू बहने लगेंगे, क्योंकि हजारों लोग देख रहे हैं पुजारी जी को, और जिस दिन कोई नहीं देख रहे हैं उस दिन ताला भी खोलने की जरूरत नहीं, बाहर से ही अभिषेक, काम चलाओ। यहां अगर चलाओगे तो वहां भक्त चलाएगा, बाबा ने कहा, बड़ों को या छोटों को, आलस्य अलवेलापन भी विकार है, कड़े शब्द है, आलस आ जाना, उठने की इच्छा ही नहीं हो रही है, यह भी विकार है, इसको विकार की संज्ञा दो तो थोड़ा शौक लगेगा और फिर काम करेंगे उसके ऊपर। तो नियमित हो, 21 दिन के लिए नहीं, 7 दिन के लिए नहीं, 3 दिन के लिए नहीं, 1 साल की नहीं, सदा के लिए पवित्रता, क्योंकि पवित्रता में ही खुशी की अनुभूति हो रही है। देख लिया नरक को, चख के देख लिया, विकारों की चक्की में जन्म जन्म पिसे है, विष है वो, पॉइजन, इंद्रिय सुख, इंद्रियों की उत्तेजनाएं बेचैन करती है चेतना को, एडिक्शन है उसमें, छूट नहीं पाती उससे, वही वही चाहिए। जैसे रास्ते चलते कोई गुफा बीच में आ गई, उस गुफा में व्यक्ति घुस जाता है, ये पवित्रता का मार्ग है, ये धर्म का मार्ग है, अध्यात्म का मार्ग है, सब कुछ जानता है, सब उसे पता है, फिर भी उस गुफा में घुसने के बाद अंदर अंदर ही अंदर जाता है, फिर बाहर आता है, पश्चाताप, दुख, थोड़ा आगे चलता है, फिर अंदर घुसता है, फिर बाहर आता है, फिर आगे, फिर अंदर खींचता है। काम सुख, जो सुख है नहीं, भ्रम है, ये भ्रम कि किसी और से मिल रहा है, वो किसी और से उसका क्या संबंध, वो तो शरीर में ही उत्पन्न होने वाली संवेदनाएं हैं, सुखद संवेदनाएं उत्पन्न हो रही है, उसका एडिक्शन है वो, ना किसी स्त्री का एडिक्शन है, ना किसी पुरुष का, अपने ही देह में उत्पन्न होने वाली संवेदनाओं का एडिक्शन है, सुखद के प्रति राग उत्पन्न हो रहा है, और जो दुखद है उससे हम दूर भागते हैं। इसीलिए अभ्यास चाहिए प्यूरिटी के लिए साक्षी स्थिति का। बिना साक्षी के अभ्यास के पवित्रता आ ही नहीं सकती, क्योंकि प्यूरिटी का संबंध दूसरे व्यक्ति से है ही नहीं। काम विकार का सुख किसी और से मिल ही नहीं रहा है, और व्यक्ति जीवन भर यही प्रयत्न करते रहता है और सामने वाले व्यक्ति को दोषी ठहराता है। और यही योगी और तपस्वी और सन्यासियों ने किया, द्वारम किमेकम नरकस्य नारी। अगर वही शास्त्र नारियों ने लिखे होते तो नरक का द्वार कौन होता? पुरुष। कोई ज्यादा भेद नहीं होता। इन्होंने लिखे इसलिए उसको दोषी ठहरा दिया, हटा दो उसको, और चले गए जंगल में तपस्या करने। पर कर पाए क्या? स्वप्नों में क्या आती थी? अप्सराएं आती थी। क्या पड़ी है अप्सराओं को? पतले दुबले, खाते नहीं पीते नहीं, जंगल में तपस्या कर रहे और स्वप्नों में अप्सराएं। कौन सी अप्सराएं? कौन इंद्र बैठा है ऊपर जो अप्सराओं को ऊपर से भेज रहा है? कोई इंद्र नहीं है, ना कोई अप्सरा है। मन का ही प्रक्षेपण है, प्रोजेक्शन ऑफ द सप्रेस्ड माइंड। दमन कर दिया है, भाग कर आ गए, इसको नहीं देखना, उसको नहीं देखना। इससे मेरी पवित्रता को खंडित किया है, उसको छोड़ दो। पत्नी को छोड़ दिया, चले गए, और अंदर ही अंदर नृत्य चालू है। दमन हुआ है, सप्रेशन हुआ है, रिप्रेशन हुआ है। दमन चेतना कभी ब्रह्मचर्य को नहीं पा सकती। बीच में स्त्री या पुरुष, एक उसमें डूबा हुआ है भोगी, दूसरा उसमें भागा हुआ है, पर दोनों ही उसी का चिंतन कर रहे हैं। एक सीधा खड़ा है, एक शीर्षासन कर रहा है, ज्यादा अंतर नहीं है दोनों में। जो भागा है वो भी उसी का चिंतन कर रहा है। रामतीर्थ, स्वामी रामतीर्थ विदेश गए, बहुत बुद्धिमान थे, गणित में बहुत बुद्धिमान। सब छोड़ दिया, संन्यास दे दिया, पत्नी को छोड़ दिया, विदेश गए। बहुत तपस्या की, साधनाएं की। उनका एक शिष्य था, उसने वर्णन किया अनुभव का, कि एक दिन रामतीर्थ की पत्नी उनसे मिलने आ गई। इतने इतने सालों बाद, जिसको सदियों कितने समय पहले छोड़ दिया था, अब उससे कोई संबंध नहीं, कोई संपर्क नहीं, उससे क्या लेना देना, अब तो संन्यस्त जीवन है। वो पत्नी आई तो शिष्य ने बताया, वो आपकी पत्नी मिलने आई है। उन्होंने कहा, नहीं, मैं उससे नहीं मिल सकता। शिष्य ने कहा, आप तो बाकी सभी से मिलते हो, फिर उससे मिलने में क्या प्रॉब्लम है? मतलब ये भाव अभी तक भी है, प्रॉब्लम उधर नहीं है, प्रॉब्लम इधर है, अंदर अभी तक भी पकड़ के रखा है। ये कैसा संन्यास है? संन्यास अर्थात सबके लिए समान। महात्मा बुद्ध जब लौटे, संपूर्ण संबोधि ज्ञान प्राप्त होने के बाद, वो भागे नहीं, अपने ही राज्य में लौटे, अपने ही पिता के सामने, अपनी ही पत्नी के सामने, अपने ही बेटे के सामने आए, भागे नहीं, क्योंकि तब सब कुछ बदल चुका था, चेतना ही बदल गई थी अंदर से। और वो धीरे धीरे सब उनके शिष्य हो गए। तो हम कहां थे? नियमित। हमारी साधना कैसी हो? नियमित। हमारी तपस्या कैसी हो? नियमित। हमारी प्यूरिटी कैसी हो? नियमित। नियम तोड़ने नहीं है। तोड़ना बहुत आसान है, बहुत आसान है, पर वही समय है जब अपने आप को रोक देना है। इच्छा हो रही है, अच्छी ठंड है, कितना मन धोखा देता है, नहीं, जागो, उठो, उठाओ। चिंतन करो, अमृत वेला क्या क्या मिलता है, क्या क्या मिल सकता है, किस स्थान पर है हम। इससे बड़ी प्राप्ति संसार में और कोई नहीं है। तो दूसरी, नियमित। जो भी हम साधना करें, नियमित कर दो। पहले 3 दिन का अभ्यास, 3 दिन सफल हो गए, सात दिन का अभ्यास, सात दिन सफल हो गए, 21 दिन। और 21 दिन अगर कोई आदत, जो एक कार्य किसी ने कर दिया, फिर 22वें दिन वो अपने आप होने लगेगा, चाहे वो भोजन का प्रयोग, चाहे अमृत वेले का प्रयोग, चाहे ब्रह्मचर्य का प्रयोग। जो डूबे हैं, सारा ज्ञान और योग सब कुछ जानते हुए भी अपवित्रता वार करती है, बड़े सूक्ष्म रूप से वार करती है, स्वप्न में वार करती है, कहीं ना कहीं आती है, वहां ये प्रयोग करना है। पहले एक दिन से चालू करो, आज कम से कम एक दिन 24 घंटे। शास्त्रों में तो लिखा है जिसने एक रात ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया, सौ यज्ञ का फल उसे मिल जाता है। एक वो व्यक्ति है जिसने सारे शास्त्रों का अध्ययन किया है, प्रकांड पंडित है, उपनिषद पढ़े हैं, शास्त्र पढ़े हैं, सब व्याख्याएं उसे पता है, एक पलड़े में उसे रखा जाए, और दूसरे पलड़े में एक व्यक्ति जिसने केवल ब्रह्मचर्य को धारण किया है, किसका पलड़ा भारी होगा? ब्रह्मचारी का। ब्रह्मचर्य संसार की सबसे बड़ी पावर है, सबसे बड़ी शक्ति है। स्वामी विवेकानंद को पूछा था, आपने जो भाषण दिया वो इतना प्रभावशाली कैसे हुआ, क्या था उसमें? क्योंकि वहां तो भाषण देने वाले बहुत सारे थे और आपसे सभी उम्र में बड़े थे, और उन्होंने भी सबने अच्छा भाषण दिया था, ऐसा नहीं कि उन्होंने भाषण नहीं दिया था, सबने अपने अपने धर्म की, हिंदू धर्म, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली थी, फिर भी ऐसा क्या था, किसका इतना प्रभाव पड़ा? क्या ये आपके गुरु की कृपा थी या कोई चमत्कार था, क्या था? उन्होंने कहा, ऐसा कुछ था ही नहीं जो आप कह रहे, ना ही मैं बहुत बड़ा पंडित हूं, ना ही मेरे पास ज्ञान बहुत है, ना ही मैंने बहुत किताबें पढ़ी है, ऐसा नहीं। आई हैव नॉट अलाउड माई माइंड टू हैव अ सिंगल सेक्सुअल थॉट इन माई लाइफ। मैंने अपने मन को ऐसा ट्रेन किया है कि ये मन कोई भी कामुक चेष्टाएं, कामुक वासनाएं, कामुक भावनाएं, कामुक इच्छाओं की तरफ हो जाता ही नहीं, अलाउ ही नहीं किया है। बस यही मेरी तपस्या है, यही साधना है। इट इज दिस अनटच्ड प्यूरिटी दैट मेड देम टू गिव अ स्टैंडिंग ओवेशन। तो नियमित, तीसरा पवित्रता कैसी हो? सहज, सहज हो, मुश्किल वाली ना हो, कठिनाई वाली ना हो, परंतु हां, कोई भी चीज शुरुआत में सहज नहीं होती है, उसके लिए साधना करनी होती है, तपस्या करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, और फिर मेहनत करते 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 वही चीज जो पहले कठिन थी सहज हो जाती है। करत करत अभ्यास, बस अभ्यास करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, और याद करते रहो कि हम वो थे जो उसने बताया है, जिनमें संपूर्ण पवित्रता थी। तुम्हारे पांचों ही स्वरूप पवित्र है, जब परम धाम में हो तो तुमसे अधिक पवित्र और कोई नहीं। जब देवता थे तो कैसी पवित्रता थी तुम्हारी, अंग अंग पवित्र थे, द्वापर में तुम्हारी तो पूजा होती थी, क्यों झुकते थे लोग प्यूरिटी के आगे? झुकते अपने अहंकार को झुका देते हैं। संगम पर ब्राह्मणों जैसा पवित्र कौन हो सकता है? और फरिश्ते तो है ही पवित्र, उनको शरीर से क्या लेना देना मिट्टी से? जिसने शरीर को मिट्टी जान लिया स्वतः ही पवित्रता की ओर अग्रसर हो जाता है। जिसे यह समझ में आ गया, ये जो देह दिखाई दे रही है इसके वास्तविक स्वरूप को देख लिया, फिर उसे इसमें आसक्ति नहीं रहती, झूठन का झूठन का झूठन है। तो पवित्रता कैसी हो? सहज। सहज बनाने के लिए थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि वो सहज हो जाए। सहज ही आत्मा की तरफ ही ध्यान जाए, जो दिखाई नहीं देती, पर इस देह की तरफ नहीं ध्यान जा रहा है, ना ही देह आकर्षित करता है, और इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल है भोजन का। जितना भोजन भारी होगा उतना ध्यान शरीर की ओर जाएगा, क्योंकि हमें अपना शरीर फील होते रहता है हमेशा। जितना वो हल्का होगा हमें अपने ही शरीर का हल्कापन महसूस होता है। अपने ही शरीर से जो जितना डिटैच है वो दूसरों के शरीर से कैसे अटैच हो सकता है। जिसके खुद के शरीर में भारीपन है उसकी बुद्धि कहीं ना कहीं जाएगी किसी के रूप की तरफ, किसी के सौंदर्य की तरफ, किसी के गुण की तरफ। इसके लिए सबसे बड़ा काम किस पर करना है? भोजन पर। खोज करनी है सात्विक आहार की। अल्पाहार की, मिताहार की, सम्यक आहार की। तो प्यूरिटी कैसी हो? सहज। चौथा, प्यूरिटी कैसी हो? स्वतः। चौथा, स्वतः। किसी ने कहा नहीं है, किसी ने बोला नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है, जबरन नहीं है, बलात् नहीं है, स्वतः है, स्वस्फुरित है। इसीलिए वो सहज भी है, स्वतः हो रही है, कुछ पुरुषार्थ नहीं किया जा रहा है। क्यों? पर इसके लिए दिन रात पढ़ते रहो, अध्ययन करते रहो, चिंतन करते रहो, एकांत में एक संकल्प लेकर बैठ जाना। पवित्र आत्माओं की क्या निशानी है? एक संकल्प, एक चिंतन लेकर बैठ जाना। बाबा ने पवित्रता के लिए क्या क्या कहा है? प्रकृति के सानिध्य में जाओ, या फिर ध्यान लगाकर बैठ जाओ और सोचो चिंतन क्या क्या होता है, या फिर अपने ही शरीर को रोज अमृत वेले एक एक अंग में प्यूरिटी की किरणें भरनी है। एक एक अंग में, मुझ आत्मा से आंखों में पवित्रता जा रही है। हर अंग अंग में, एक भी अंग छूटने ना पाए, इंच इंच में पवित्रता भरनी है शरीर के। फिर कैसा अनुभव होता है देखना। सोख करके रखना है पवित्रता में मन को, उसकी गर्दन पकड़ के डुबो दो उसको, जब तक भीग ना जाए। सदा। पांचवा, पवित्रता स्वाभाविक हो, अर्थात स्वभाव ही बन जाए। और स्वभाव बनने के लिए, आदत के लिए लगते हैं 21 दिन और स्वभाव के लिए लगते हैं 90 दिन, ऐसा कहा जाता है। इट टेक्स 21 डेज टू फॉर्म अ हैबिट एंड 90 डेज लाइफ। 90 दिन, 3 मास, कोई भी चीज, वो फिर स्वभाव बन जाएगी हमारी। इतना स्वभाव कि हम न चाहते हुए भी अपने आप हो रहा है, इच्छा ही नहीं है। जैसे अभी बाहर की कितनी भी वस्तुएं हमारे सामने रखी जाए, हलवाई की दुकान से गुजरते हैं तो किसको किसको इच्छा होती है वो जाके खाऊं? किसी को भी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि स्वभाव बन गया है। इतनी बात गहरी मन में चली गई कि ये हमारा भोजन ही नहीं है, हम इनके हाथ का खा ही नहीं सकते। वैसी प्यूरिटी भी स्वभाव बन जाए। कोई भी अपवित्रता बात दिखाई दे, ये संसार सब जगह अम्प्यूरिटी ही इम्प्यूरिटी समाई हुई है, पर हम कमलवत, अंदर से इतना मजबूत कर लिया है स्वयं को। जो संसार, जो किसान लोग होते हैं उनके पैर इतने कड़क, इतने मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि जंगलों से चलने की आदत है उनको। पाव चप्पल नहीं पहनते वो लोग, जिनको जंगलों में, जिनका गांवों में जिनका जन्म होता है, और उनके पैर नीचे से इतने कड़क हो जाते हैं कि कांटा टूट जाता है उनके पैर में नहीं घुसता है। कैसी आदत है ये? कुछ नहीं होता है उनको, हाथ उनके ऐसे कड़क होते हैं, पूरे पैर कड़क होते हैं नीचे से, आदत इतनी पड़ गई है उनको। अपने आप को इतना शक्तिशाली बना के रखा है उन्होंने, स्वभाव ही हो गया है उनका। कितनी बातें हो गई? 5। पहला विधिपूर्वक, दूसरा नियमित, चौथा सहज, चौथा स्वतः, पांचवा स्वाभाविक, छठवा मन वचन कर्म और स्वप्न में पवित्रता, मन में भी पवित्रता। एक एक संकल्प का जैसे हमें भोग लगाना है, जब भोग हम लगाते हैं तो देखते हैं कितना ध्यान रखते हैं कि पवित्र वस्तुओं का ही भोग लगाया जाए, वैसे संकल्पों का भोग लगाना कितने शुद्ध संकल्प होने चाहिए। बोल और कर्म, बाबा ने कहा कि ऐसे ही बोल दिया, ऐसे ही हो गया, चलाने की कोशिश नहीं करो। अगर उसमें अंश भी है, वंश भी है, द्वेष है, आवेश है, और कर्म के लिए क्या कहा, संबंध संपर्क, चाहे ज्ञानी या अज्ञानी कोई भी हो, सबके प्रति समान, वही प्यूरिटी का भाव। स्वप्न, सारे दिन भर हम जो सोचते हैं वही स्वप्न में दिखता है, सारे दिन भर जो दमन किया होता है वो स्वप्न में दिखता है, जो अतीत की बातें हैं वो स्वप्न में दिखती है, जो पूर्व जन्म की बातें हैं वो स्वप्न में दिखती है, ऐसी चार प्रकार के स्वप्न। और किसी किसी को सुपर कॉन्शियस, भविष्य में क्या होने वाला है वो स्वप्न में दिखता है। स्वप्नों के प्रकार है अलग अलग, और सबसे मुख्य है कि सारे दिन भर जिसको दबा के रखा है, जबरदस्ती उपवास किया है, रात में क्या दिखेगा, ब्रह्मा भोजन, जबरदस्ती किया हुआ, फल नहीं देता है। कर्मों को भी, हमारे बोल किसी को हर्ट ना करे, किसी को दुख ना दे, कमेंट्स ना हो, इंसल्ट करने वाले ना हो, कटाक्ष वाले ना हो, व्यंग बाण ना हो, जो जिस किसी को भेद दे। और इसमें हम सबसे ज्यादा हानि उसकी नहीं कर रहे, अपनी कर रहे, क्योंकि ये स्व के प्रति हिंसा है, उसको तो कुछ नहीं हो रहा है। जो निंदक होता है उसे बड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है, कितनी बुद्धि चलानी पड़ती है, वो आएगा फिर उसके लिए ये शब्द बोलूंगा, फिर उसके शब्दों की रचना करनी पड़ती है, कठिन काम है, पर दया का पात्र है, करुणा का पात्र है। खालीपन है अंदर, ईर्ष्या है शायद अंदर, इसलिए तो किसी की निंदा कर रहे। निंदा करना, कमेंट्स करना, किसी के पीठ पीछे, किसी के एब्सेंस में उसकी ग्लानी करना, क्या ये पवित्रता है ना? हमें किसी के बारे में क्या पता है, कुछ भी तो नहीं। जो हमने दूसरों से सुना है क्या वो सत्य है ना? पति पत्नी दोनों जीवन भर साथ रहते हैं, पर क्या पति कह सकता है मैंने इसको जान लिया? क्या पत्नी कह सकती है मैंने इनको जान लिया? ना, 60 साल साथ रहने के बाद भी जान नहीं पाते। हमें उसके बारे में क्या पता है? जो दूसरों ऊपर से दिख रहा है वो सत्य नहीं है, जो सुना है वो सत्य नहीं है। तो छठवा, मन वचन कर्म, स्वप्न में भी पवित्रता। मन वचन कर्म में रहेगा तो स्वप्न में अपने आप होगी, यदि दमन होगा, जबरदस्ती कर रहे होंगे तो स्वप्न में विकार जागेंगे। जरूर दिन भर में कोई गलती की है, जरूर दिन भर में कोई मर्यादा का उल्लंघन किया है, जरूर दिन भर में ऐसा कुछ देखा है, कहा है, शब्द निकले हैं हंसी मजाक के, विकार के, कुछ पड़ा है ऐसा, अननेसेसरी सर्फिंग, अननेसेसरी वो सारी किताबें, लिटरेचर जो उत्तेजना उत्पन्न करे, उसके बाद नेक्स्ट 7th, दृष्टि वृत्ति वाइब्रेशन की पवित्रता। हमारी दृष्टि पवित्र हो, वृत्ति पवित्र हो जाए, और जिस तरह के प्रकंपन है, ऐसा है कि कोई कोई आता है तो अचानक से पूरे वायुमंडल को बदल देता है, पॉजिटिव भी और निगेटिव। किसी किसी का व्यक्तित्व ही ऐसा है कि जहां जाते हैं हलचल, कभी उन्होंने कुछ बोला भी नहीं है पर लोगों के मन में हलचल उत्पन्न हो जाती है। और कोई कोई ऐसे है कि जहां जाते हैं एकदम वायुमंडल पीसफुल हो जाता है। तो वाइब्रेशंस बहुत काम करते हैं। हमारे कहीं जाने से अगर दूसरों के मन में हलचल हो रही है, दूसरे नहीं चाहते कि ये व्यक्ति यहां आ जाए, अर्थात अपवित्रता है कहीं ना कहीं। इम्प्यूरिटी, तो दृष्टि को पवित्र बनाना है। आत्मिक भाई भाई, ये कौन है? भाई क्या सोचे, ये कौन है? बहन है। ये कौन है? देवी है। ये कौन है? पूजनीय है। ये कौन है? आत्मा है। ये कौन है? भाई है। एक तो सोचे बहन है, फिर सोचे भाई भी है, और कौन है? फरिश्ता है, माँ है। ये भी बहुत पवित्र संबंध है। कौन है? जगदम्बा है, शिव शक्ति है। कितने सारी बातें। उसी तरह बहने क्या सोचे, ये आत्मा है, भाई है, हनुमान, गणेश, पूजनीय, या देवता है सतयुग का, या परम धाम की आत्मा है, या अभी अभी अवतरित हुई आत्मा है, या श्रेष्ठ ब्रह्मा कुमार है, या बाल ब्रह्मचारी है। ये सोचे ये बाल ब्रह्मचारिणी है। हम किसी के ब्रह्मचर्य को खंडित करें, डबल बोझ है। इसी मुरली में एक शब्द आया है, अपवित्रता का खाता जमा मत करो। हमारी वजह से किसी में अपवित्रता बढ़ रही है तो ये बोझ हम पर है। जरूर कुछ ऐसा पहना होगा या ऐसा कुछ दिखावा किया होगा कि उस व्यक्ति का मुझ में आकर्षण हो गया। न मैं किसी को याद करूं, न मुझे कोई याद करे। दादी क्या कहा करती थी, कोई ना मुझे याद करे, ना मैं किसको याद करूं। दृष्टि, वृत्ति, वाइब्रेशंस। नेक्स्ट, सदा। पवित्रता कैसी हो तुम्हारी? अविनाशी, सदा हो। एक तो बताया नियमित, रूटीन, रेगुलर। एक है सदा चलने वाली पवित्रता। मुरली में शब्द आया है सदा। सदा का ये व्रत है। ऐसे बच्चे बाबा को बहुत ज्यादा प्रिय है कि जिनकी पवित्रता सदा से रही है, कभी भी खंडित नहीं हुई है। सभी स्थिर होके बैठेंगे आत्मिक स्वरूप में, और मैं आत्मा अपने शरीर के एक एक अंग को पवित्रता की किरणों से भर रही हूं। इस शक्तिशाली स्वरूप में स्थित हो जाएंगे कि मुझ आत्मा से पहले मस्तक, चेहरा, हाथ, दाया हाथ, बाया हाथ, पेट, छाती, पैर, ऊपर से लेकर नीचे तक संपूर्ण देह में प्यूरिटी के प्रकंपन मैं आत्मा भेज रही हूं, और देखना है उन प्रकंपनों को जाते हुए। नौवा अखंड, नौवा प्योरिटी कैसी हो, अखंड वो कारण निकालने हैं, लिस्ट बनानी है कि जिससे प्योरिटी खंडित हो रही है। इंग्लिश में कहते हैं ट्रिगर्स, वो कौन से ट्रिगर है कि जिससे प्योरिटी खंडित हो रही है। सारे दिनचर्या में कोई व्यक्ति है, कोई वस्त्र है, टीवी है, मोबाइल है, इंटरनेट है, क्या है, जो कुछ भी है, कोई स्थान है, कोई म्यूजिक है, कोई गीत है, कुछ भी इनमें से इम्प्यूरिटी को ट्रिगर कर सकता है, उत्तेजक। उन सारे उत्तेजनाओं को हटा दे। जब दो व्यक्ति आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे के चेहरे को देखते हैं, एक आकर्षण सा उत्पन्न होता है। इसलिए ब्रह्मचारियों के लिए नियम है, किसी भी स्त्री या पुरुष दोनों एक दूसरों की चेहरे को देखते हुए आंखों में आंखें डालकर बात न करे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन डेवलप होता है। और जो कामुक संकल्प इधर है, वो संकल्प वाइब्रेशंस के रूप में एक मन से दूसरे मन में ट्रांसफर होते हैं, चाहे वो व्यक्ति कितने ही दूर क्यों ना हो। समान कामुक इच्छाएं जागृत होगी दोनों तरफ, यदि एक तरफ है तो, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा यहां। इसलिए अखंड पवित्रता अर्थात वो सारी चीजों को हटाना है और देखना है क्या चीज है वो। हो सकता है वो बिस्तर इतना मुलायम है, सुख सुविधाएं वाला है, जहां सुख सुविधाएं है वहां ब्रह्मचर्य खंडित होगा, जहां तपस्या है, साधना है, अभाव है साधनों का, वही ब्रह्मचर्य टिकता है। जितना ज्यादा सुख सुविधा की शरीर को आदत डालो, ब्रह्मचर्य टूटने की संभावना उतनी ज्यादा। दसवा यथार्थ पवित्रता कैसी हो, यथार्थ, उसके दो अर्थ बताएं, पहला युक्ति युक्त और दूसरा अर्थ सहित। उसके संकल्प बोल कर्म सब कुछ अर्थ सहित होगा, एक भी शब्द बोल ऐसे ही बोल दिया, ऐसे ही निकल गया, ऐसे ही हो गया, ना यथार्थ पवित्रता। एक बताया था विधि पूर्वक किस विधि से अपनाई जा रही है, एक है यथार्थ अर्थ सहित। उसके जितने डेफिनेशन है ब्रह्मचर्य के, वो सब उसमें समाये हुए होने चाहिए, ब्रह्माचर्य से लेकर तो ब्रह्मचर्य तक सब कुछ। ग्यारहवीं डेफिनेशन, चेहरे और चलन से अनुभव हो दूसरी आत्माओं को। प्यूरिटी कैसी हो, चेहरे और चलन से दूसरों को अनुभव हो। ये आगे की स्टेज है बहुत, इसमें ऐसा नहीं कि किसी का चेहरा ज्यादा गोरा है तो ज्यादा पवित्र दिखाई दे रहा है और किसी का काला काला है तो ये कम पवित्र है। इसका काले और गोरे से संबंध नहीं है, या तो कोई देवी का पार्ट प्ले कर रही है तो वो ज्यादा पवित्रता है उसमें, ऐसा नहीं है। शरीर के चमड़ी के कलर से इसका संबंध नहीं है प्यूरिटी का। और ये भी देखने में आया है, जिन व्यक्तियों में बहुत ज्यादा पवित्रता है, वो आते ही पता चल जाता है ये कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा नहीं कि वो दिखने में कुछ है, परंतु प्रेजेंस मात्र से वो सेंसिटिव लेवल प्यूरिटी की जैसे जैसे बढ़ती जाती है, हम डिटेक्ट करने लगते हैं वायुमंडल में अपवित्रता को। किसी स्थान पर जाने के बाद तुरंत पता चलता है ये स्थान मुझे रहना नहीं है, यहाँ ये इम्प्योर है, यहाँ के वाइब्स अलग है। तो माइंड इतना प्योर, माइंड सेंसिटिव होने लगता है, उसको तुरंत पता चलने लगता है। किसी ने कुछ खाने के लिए दिया है, उसको पता लगता है ये कहां से बना हुआ है, शायद ये जिसने बनाया है वो माता अपने सोच रही होगी कुछ पोता पोती के बारे में, मोह के वाइब्रेशन उसको दिखाई देने लगेंगे, इसमें कुछ तो गड़बड़े। इत हद तक प्यूरिटी को लेके जाया जा सकता है कि हम एनवायरनमेंट के वाइब्रेशंस डिटेक्ट करने लगे, व्यक्तियों को डिटेक्ट करने लगे, भोजन को डिटेक्ट करने लगे, परिस्थितियों को, हर चीज को। लास्ट, चेहरा, मुख, हाथ, पैर में पवित्रता का श्रृंगार प्रत्यक्ष हो। श्रृंगारी मूर्त, पवित्रता की श्रृंगारी मूर्त का प्रगटीकरण सबके सामने, ये है 12th। तो ऐसी टोटल कितनी बातें हो गई? 12। फिर से रिवाइज करते हैं, रोज रोज रिवाइज करना है। एक चार्ट ही बना के रखना है अपनी डायरी में, आज विधिपूर्वक रहा, दूसरा बताया नियमित, तीसरा बताया सहज रहा, स्वतः रहा, स्वाभाविक रहा, मन वचन कर्म स्वप्न वाला रहा, दृष्टि वृत्ति वाइब्रेशंस वाला रहा, सदा रहा, अखंड रहा, यथार्थ रहा, अनुभव हुआ दूसरों को, ये तो दूसरे ही बताएंगे, इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। और लास्ट, प्रत्यक्ष, पवित्रता की श्रृंगारी हुई मूर्त। ऐसे कैसे पवित्रता की श्रृंगारी मूर्त आत्माओं को, इस मुरली में 6 बड़े बड़े समान है शुरुआत में, वो तो हमने बोला ही नहीं, ऐसे विशेष होवनवार पूज्य आत्माओं को, ऐसे जहान के नूर आत्माओं को, ऐसे आधार मूर्त आत्माओं को, ऐसे अमूल्य रत्न आत्माओं को, ऐसे चढ़ती कला वाले आत्माओं की, तुम्हारी चढ़ती कला विश्व की चढ़ती कला, तुम्हारी गिरती तो विश्व की गिरती कला, ऐसे संसार में नई रोशनी लाने वाली आत्माओं को, ऐसे भाग्य विधाता से सारा भाग्य पाने वाली आत्माओं को, भाग्यवान आत्माओं को, लवल लाइट आत्माओं को, हल्की आत्माओं को, नाचने वाली आत्माओं को, शरीर से भारी है फिर भी हल्के, गुजरात वालों को कहा भारी है पर हल्की आत्माओं को, नाचने वाली आत्माओं को, गाने वाली आत्माओं को, मौज में रहने वाली आत्माओं को, रूहानी मौज में रहने वाली आत्माओं को, मन की मौज में रहने वाली आत्माओं को, और आलस्य अलबेलापन के अंश मात्र से मुक्त आत्माओं को, ऐसे 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 ऐसी महत्व वाली आत्माओं को, महत्वपूर्ण आत्माओं को, पवित्रता की महिमा को जानने वाली आत्माओं को, तो और ये सारी 12 बातें बताई, वो सब आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट।